ये निकाल उसके ऊपर निकाल हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 जी महाराज की बड़े सीरियस बैठे हैं आप लोग जय राधा ताली बजाने से क्या होगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। बड़े बड़े देवता लोग जपते हैं, ब्रह्मा जी जपते हैं, भगवान शिव जपते हैं, नारद जी निरंतर इसका जाप करते रहते हैं। चैतन्य महाप्रभु की कृपा है, आप हम सबको ये बड़ी सहजता से प्राप्त हुआ है। इसलिए हाथ ऊंचा करके देखो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम 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 हरे लाभ ये है कि यदि आपने हाथ में ताली बजाया नाम संकीर्तन के ऊपर, तो आपके जीवन में राहु केतु नहीं आएंगे कभी भी। और तीसरा नंबर ये लाभ है कि आपके तलहटी में जो खराब वाली रेखा है ना, वो समाप्त हो जाएगी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा
Krishna, 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 Krishna.
राम की, राधा श्याम सुंदर जी की, श्री प्रभुपाद जी महाराज की। संत लोग कहते हैं, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। प्रभुपाद जी ने और कोई मंत्र नहीं दिया, इसी मंत्र से बड़े बड़े विद्वानों को, देश विदेश में जितने बड़े बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग थे, उनको प्रभुपाद जी ने बदल दिया। इससे यही मंत्र है, तो आप थोड़ा शांति बनाइएगा आप लोग। हाँ, यहाँ बैठ जाइए, आप लोग ऊपर बैठ सकते हैं, जगह ना ऊपर बैठ जाओ और आगे खिसक जाइए थोड़ा सा। ये भक्तों की मेला लगा हुआ है ना, अब
गदाधर शिवस्य गौरव Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. इन दिनों में चैतन्य महाप्रभु के द्वारा जो चैतन्य चैतामृत में कथन है उसको हम लोग याद कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आज भी चैतन्य चैतामृत से ही है कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। चैतन्य चैतामृत अध्याय एक, आदि लीला अध्याय एक, श्लोक संख्या है 65, 66, 67, 68, है ना, है ना। चैतन्य महाप्रभु का जो भाव है, विचार है, निरंतर महाप्रभु ने अपने संदेशों में यही बात कही है कि भगवान के नाम के अलावा और कोई साधन नहीं है। किसी ने महाप्रभु से पूछा कि प्रभु, ये नाम संकीर्तन जो आप करते हैं, आपके पास तो मृदंग भी है, सब आपके संगीगण भी हैं, यदि किसी के पास कुछ ना हो तो क्या करे हो? तो महाप्रभु ने कहा कि दस पांच मिली दुअरे बसिया, दस पांच आदमी मिल करके अपने दरवाजे पर बैठना, दस पांच मिली दुअरे बसिया, और कोई आपके पास इंस्ट्रूमेंट ना हो, मृदंग की व्यवस्था ना हो, करताल की व्यवस्था ना हो। तो महाप्रभु ने बड़ा सुंदर उपाय बताया। महाप्रभु ने कहा, दस पांच मिली दुअरे बसिया, कीर्तन करिह सदा हाथे ताली, ताली बजा के कीर्तन करते रहिए। आप ताली बजाओ और कीर्तन करो। धन्यवाद। ताली से भी महाप्रभु प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। ताली बजाए कीर्तन गाओ, जैसे बच्चा कोई छोटा रोता हो ना, चुटकी बजाते हैं, ताली बजाते हैं, लेकर के नाचते हैं, तो बच्चा शांत हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, यदि आपने ताली बजा करके नाम संकीर्तन किया और नाम संकीर्तन करते करते यदि आपने नृत्य कर दिया, नाच दिया, तो 84 लाख प्रकार का जो जोनी है जिसमें जाना पड़ता है, उसको महाप्रभु कहते हैं कि बंद हो जाएगा, वो जाना ही नहीं पड़ेगा, आवागमन समाप्त हो जाएगा। शर्त यह है कि हमें कीर्तन करना चाहिए। आइए यहाँ महाप्रभु वर्णन करते हैं इसमें। ईश्वरे अवतारे ये तीन प्रकार, अंश अवतार और गुण अवतार। सत्वेश अवतार तृतीय ये मत, अंश अवतार पुरुष मतस्य मतस्यादि कई अर्थ। ईश्वर के अवतार के तीन वर्ग हैं, अंशावतार, गुणावतार तथा सत्वेशावतार। पुरुष तथा मत्स्य अवतार अंश अवतारों के उदाहरण हैं। वैसे तो भगवान के बहुत अवतार हैं, लेकिन इसमें मुख्य रूप से बताते हैं भगवान के असंख्य अवतार हैं। आप पूरे पृथ्वी को पेपर के रूप में यूज कीजिए, पेपर बना लीजिए, और संसार में इस ब्रह्मांड में जितनी नदियां हैं, सागर हैं, उसको सिलाही बना लीजिए, और जंगल में जितनी लकड़ियां हैं उसको लेखनी बना लो, ये जंगल के लकड़ी समाप्त हो जाएगी। समुद्र के जल भी सिलाही के रूप में समाप्त हो सकता है, पृथ्वी भी पेपर के रूप में समाप्त हो सकती है, लेकिन महाप्रभु कहते हैं कि भगवान के अवतार को गिनती नहीं किया जा सकता है। इतने अवतार है भगवान के। भगवान के सत्वेशा अवतार है, गुणा अवतार है, पुरुषा अवतार है, मनवंतरा अवतार है, असंख्य अवतार है भगवान के। जैसे जैसे धर्म का रक्षा करना होता है उसी रूप में भगवान अवतीर्ण हो जाते हैं। इसमें कहते हैं सत्वेशा अवतार में ईश्वर के अवतार के तीन वर्ग हैं, अंश अवतार। उसी मनुष्य भगवान जैसे गीता के विभूति योग में गिनती करते हैं, कहते हैं कि मनुष्यों में मैं राजा हूं, भगवान कहते हैं, नदियों में गंगा हूं, वही हैं सब, ऋषियों में नारद हूं, और क्या कहते हैं, इंद्रियों में मन मैं हूं। आपके पास जो मन है भगवान कहते हैं मैं हूं उसमें। असंख्य भगवान के अवतार हैं ये। इन अवतारों की गिनती करना अत्यंत कठिन है। अंश अवतार, भगवान कभी कभी स्वयं न आकर के किसी व्यक्ति विशेष में अपनी विशेष कृपा भर लेते हैं। प्रभुपाद जी के विषय में भी संत लोग ये बात कहते हैं कि प्रभुपाद जी भी अवतार हैं। इतने थोड़े समय में, इतना थोड़े काल में और उस एज में प्रभुपाद जी ने जो कार्य किया है, आप सब इसको महसूस करते होंगे, आपके जीवन में उतर रहा है, आपके मन में कितनी शांति है, कितना सुख है, ये प्रभुपाद जी का देन है। प्रभुपाद जी यदि इस मंत्र को अपने देह का चिंता न करते हुए प्रभुपाद जी पीछे सुनते हैं आप लोग, लगभग 35 दिन प्रभुपाद जी पानी के जहाज में रहे, अनेक प्रकार की कठिनाइयां भी सहा उन्होंने, कोई साधारण व्यक्ति तो कर नहीं सकता है। आज 70-75 साल के आदमी अपने दरवाजे से निकलने में घबराता है, 70 साल की आयु हो जाए, 60 पार हो जाए तो घबराने लगता है कि भाई कहाँ जाऊं मैं अब छोड़कर। और प्रभुपाद जी उस अवस्था में, उन दिनों में प्रभुपाद जी सब कुछ त्याग करके और विदेश चले गए, कोई उनका परिचय, कोई जान पहचान नहीं था, और कैसे गए, सब कुछ छोड़ करके गए। किसी ने प्रभुपाद जी से पूछा कि प्रभुपाद जी आपका एक ही संतान, एक ही पुत्र था, आपने उसका त्याग कर दिया। प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया कि नहीं नहीं, एक ही संतान था, हमने त्याग करके आया, लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु ने मुझे अपने संतान से विशिष्ट हजारों संतान के रूप में खड़ा कर दिया। आज कोई भी बालक अपने माता पिता का पूजा करता है? कहीं देखे हैं कि अपने पिता को बैठा को एकदम समय से 7:15 बजे आरती करता हो? कोई बालक? गाली जरूर मिलती है, अपमानित जरूर हो जाता है व्यक्ति, सेवा नहीं होता है। इसका कारण ये था कि प्रभुपाद जी अपने को भगवान के साथ जोड़ लिया था। मैं भगवान का हूं और भगवान हमारे हैं, यही सूत्र को जोड़ना है हम सबको ही, कि आप मेरे हो और मैं आपका हूं, बस और कोई बीच में संबंध नहीं है। तो प्रभुपाद जी के विषय में भी संत लोग कहते हैं, यहां अंश अवतार और गुणा अवतार, किसी किसी व्यक्ति में विशेष गुण दे करके भगवान भेज देते हैं, विशेष गुण प्रदान करते हैं भगवान। जैसे सत्वेशावतार में, मत्स्य अवतार में बहुत कार्य नहीं हुआ, केवल मत्स्य अवतार में केवल राजा को दर्शन दे करके भगवान लीला स्मरण कर लिया उन्होंने, परंतु भगवान का जो भी अवतार होता है कुछ न कुछ उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ होता है, धर्म की रक्षा करने की बात होती है उसमें। अब कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शिव तीन गुण अवतारे गणी सत्वेशा सनकादि पृथु व्यास मुनि। ब्रह्मा विष्णु तथा शिव ये गुणावतार हैं, ये गुणावतार हैं, विशेष गुण है इनमें। गुणावतार का मतलब होता है भगवान की विशेष शक्ति भर देते हैं, विशेष ताकत आ जाता है उस व्यक्ति में। श्री राधा कृष्ण गुणानुवर्णने, उनके गुणों का वर्णन करने लगता है। जैसे ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी में भगवान ने विशेष ऐसा गुण ज्ञान भर करके भेजा और पूछा कि क्या करना है। ब्रह्मा जी ने पूछा कि क्या आज्ञा है, क्या सेवा है, तो बोले कि तुम सृष्टि करो। सृष्टि ब्रह्मा जी ने किया, अनेक पुत्रों को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र हैं, 10 मानस पुत्र में से एक नारद जी भी हैं। 9 पुत्रों ने विवाह किया लेकिन नारद जी ने विवाह नहीं किया। सनकादि 4 कुमार भी विवाह नहीं किया, तब उन्होंने मनु शत्रुपा को उत्पन्न किया जिससे सृष्टि आगे चली। और ये ब्रह्मा जी की सृष्टि है, विशेष भगवान ने गुण भर के भेजा, ये ब्रह्मा जी की सृष्टि है। आप यहाँ बैठे हो, इस हॉल में काफी भीड़ है, आप देखो किसी व्यक्ति का भी चेहरा एक में नहीं मिलता है, सबका सब वहीं पर है, नाक वहीं है, आंख वहीं है, कान भी वहीं है, सबका सारा शरीर में जितने अंग हैं सब हैं, लेकिन फिर भी आपस में चेहरा नहीं मिलता। ऐसा कोई कर सकता है? ये ब्रह्मा जी की सृष्टि है, बड़ी बारीकी से सृष्टि की गई है। केवल यदि आप शरीर के विषय में समझ लें तो भगवान को समझने में बहुत देर नहीं लग सकता है। आप किसी का चेहरा एक में, आप कह सकते हैं कि भाई यदि 2-4 सौ आदमी इकट्ठे हो जाए तो 2-4 आदमी के चेहरा मिल सकता है, हो सकता है चेहरा मिल सकता है, यदि चेहरा मिल जाए तो फिर उसका नेचर स्वभाव नहीं मिलेगा आपस में। हो सकता है स्वभाव भी मिले कुछ लोगों का, तो फिर उनका ब्लड ग्रुप नहीं मिलेगा आपस में। इतनी बारीकी से सृष्टि किया है ब्रह्मा जी ने। यहां कहते हैं ब्रह्मा विष्णु तथा शिव ये गुणा अवतार हैं, यहां कृष्ण की बात नहीं है, उनसे उनके नीचे बहुत से भगवान के अवतार हैं। शिव जी को देखिए, भगवान शिव न जीव है न भगवान है, उनकी मृत्यु नहीं होती है। भगवान शिव की जीव भी नहीं है और भगवान भी नहीं है, लेकिन इसमें क्या कहते हैं, इनके भगवान ने विशेष अपने गुण को भर करके भेज दिया है। भगवान शिव क्या करते हैं, क्या काम है, लोग कहते हैं भगवान शिव बहुत गांजा पीते हैं, ऐसे लोग कहते हैं भगवान शिव गांजा पीते हैं, भांग खाते हैं बहुत। अरे आज के भ्रष्ट व्यक्ति भी भगवान शिव के चेहरा बनाने वाला व्यक्ति हाथ में उनका चिलम नहीं देता है। आज का भी जो आदमी है बनाने वाला भ्रष्ट आदमी है, फिर भी उनके हाथ में क्या देता है, माला देता है, पकड़ा देता है, आंखें बंद रहती है। आपने कभी देखा कि भगवान शिव भांग के गोले खा करके बैठे हो, कभी भी नहीं, नहीं खाते हो, वैष्णव है ना, कैसे खाएंगे, वैष्णव नाम यथा शंभु, वैष्णव के आचार्य हैं, मालिक हैं। अरे भाई आप हम सब जब चाय नहीं छोड़ते पीते हैं, त्याग दिए हैं, तो भगवान शिव तो बड़े ऊंच कोटि के संत हैं, ये कैसे खा लेंगे, आचार्य हैं। द्वादश महाजन में एक महाजन भी हैं, भागवत धर्म को ठीक से समझने वाले हैं, ये स्वयंभू नारदो शंभू, शंभू माने शिव। ब्रह्मा जी भी द्वादश महाजन में एक महाजन है, स्वयंभू नारदो शंभू कुमारो कपिलो मनु जनको प्रहलादो भीष्म बलिर भैया शकीर भैया, ये द्वादश महाजन है, भागवत धर्म को ठीक से समझने वाले हैं। तो भगवान शिव कभी भी ये सब काम नहीं। हाँ एक बार भगवान शिव ने विष पान किया था, वो भी किसके लिए, अपने स्वाद के लिए नहीं, सृष्टि समाप्त हो जाती। समुद्र मंथन से जब विष निकला तो सबके पास सब संपदा चला गया, कोई ऐरावत हाथी घोड़ा ले गया, कोई लक्ष्मी जी को ले गया, कोई संपदा ले गया। जब विष निकला तो सुर असुर दोनों डर गए आपस में, अब इसका क्या होगा, वो विष कोई साधारण तो था नहीं, सृष्टि समाप्त होने वाली थी विष से। दौड़े दौड़े सब भोले बाबा के पास गए, बाबा बाबा, बोले हाँ मेरी रक्षा करो। भगवान भी गए, मेरी रक्षा कर दीजिए प्रभु, क्या बात है, बोले कि प्रभु ये विष को आप पी लीजिए। अब देखो पत्नी जी साथ में बैठी हूँ, पार्वती जी साथ में बैठी हैं, और देवता लोग कहते हैं कि इस विष को बाबा आप पी लो, कैसा लगेगा, किसी पत्नी के सामने किसी पति को गाली दे दो। पार्वती जी बैठी हैं और देवता लोग विष ले गए। भगवान शिव ने सोचा कि सृष्टि समाप्त तो हो सकती है, भगवान प्रभु की सृष्टि है, देखो कितने समर्थ हैं। देवी पार्वती जी को देखा, क्या विचार है, पार्वती जी ने इशारा किया कि मैं आपके प्रभाव को जानती हूँ। भाई हर पत्नी अपने पति को जानती है, जानती है ना, सब सब जानती है, बोल भी देती हैं, जानती नहीं तुम्हारे विषय में, सब जानती हूँ मैं, बोलती भी हैं साथ में। एक बार ना पति पत्नी में बड़ी भारी लड़ाई हुई, बड़ा लड़ाई हो गई आपस में, कुछ बात लेके हुआ होगा, बड़ी लड़ाई जोर से हो गई, पति को बड़ा गुस्सा आया। पति ने कहा कि राम राम, इतने वर्ष हो गया, 25 साल हो गया शादी का, आज तक तुमको मैं समझ नहीं पाया कि क्या तुम चीज बनी है, समझा ही नहीं। पत्नी ने कही अरे मुंह फूका, तू क्या मुझे समझेगा, जिसने बनाया ना वो भी नहीं समझ पाया। पार्वती जी तो प्रभाव को जानती थी, अच्छा प्रभाव को जानती थी। पार्वती जी ने कहा कि प्रभु सृष्टि की बात है आप। तो भगवान शिव ने क्या किया, मुंह खोला। कैसे खोला, बोला रा करो, मन नहीं बोलना है, खाली रा करो, मुंह खुला रहेगा, रा मुंह खुला है ना। इसके बाद उन्होंने विष को पी लिया और कहा मां कहने से मुंह बंद हो गया। अब विष का प्रभाव बहुत कड़ा था, गला जलने लगा। भगवान शिव ने कहा कि भाई यदि इस विष को मैं बाहर फेंकता हूं तो पूरी दुनिया पूरी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। कोविड के जैसा काम करता था ना वो सब, अभी याद ना ये कोविड कितने परेशानी था, सब मर जाएंगे सृष्टि में। अंदर डालता हूं तो भगवान बैठे हैं, बाहर फेंकता हूं तो सृष्टि समाप्त, अंदर यदि मैं डालता हूं तो हमारे परमात्मा प्रभु बैठे हैं, उन्हें बड़ा कष्ट होगा। आप सोचो, चिंतन करो कि जो विष पीने अंदर डालने में घबराता है वो शराब भांग और गांजा कैसे पी सकता है। परम वैष्णव है भगवान शिव, न अंदर डाला न बाहर फेंका, भगवान शिव तो समर्थ हैं। गले में ही रोक लिया और विष के प्रभाव से गला नीला पड़ गया, इसलिए भगवान शिव का एक नाम नीलकंठ महादेव भी है। यही प्रभाव है, भगवान शिव इतने समर्थ हैं। इसलिए इसमें भगवान शिव का भी नाम आया। अनेक प्रकार के कार्य किया है भगवान शिव ने। राम से थोड़ा द्रोह करके देखो, अरे रावण को इतना शक्ति मिली थी, इतना बलवान था, इतना पहलवान था, भगवान शिव को पुजारी था, 10 शिष्य था ना, 10 शिष्य को काट करके भगवान शिव को फूल के भांति चढ़ा देता था। चंद्रहास खड़क लेकर के सर काट करके चढ़ा देता था, भगवान शिव प्रसन्न हो जाते थे। कैलाश को खेल खेल में गेंद के भांति उठा लेता था, भगवान प्रसन्न होकर के उसको खड़क भी दिया, अद्भुत है तुम्हारी ताकत। वह पृथ्वी पर, पृथ्वी से ऊंचा बैठ सकता था, पानी पर चल सकता था, हवा में उड़ सकता था, सब कुछ कर सकता था। शंकर जी को प्रसन्न कर लिया। प्रसन्न करने के बाद जब राम जी से द्रोह किया, जानकी जी को चुरा करके जब ले गया, राम से जब विरोध किया, तो भगवान शिव ने उसकी सहायता नहीं किया, बिल्कुल सहायता नहीं किया। भगवान शिव कहते हैं मेरा भक्त बन करके हमारे राघवेंद्र सरकार से तुम द्रोह करोगे, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकती। वही भगवान शिव अपने अंश के रूप में, हनुमान के रूप में जाकर के रावण को समझा रहे हैं, बार बार समझाते हैं, नहीं समझ में आती है बात। भगवान शिव एक आचार्य हैं, महाजन हैं, भागवत धर्म को तत्व से समझने वाले, इनके जीवन में कभी भी ऐसा दोष नहीं आ सकता है जैसे आप सब वैष्णव कहाँ ये सब दोष है। मुक्त होना चाहते हैं सब, इसी जन्म में जाना चाहते हैं सब। प्रभुपाद जी ने जब त्याग किया, त्याग करने के बाद तब प्रभुपाद जी को आगे प्राप्त हो गया। भौतिक वस्तु को त्याग करना ही भक्ति है, भक्तों का संग करना ही भक्ति है, कृष्ण से प्रेम बढ़ाना ही भक्ति है। कृष्ण से प्रेम बढ़ाओ और बिना कुछ त्याग किए आगे प्राप्त भी नहीं होता है। जब आप नींद त्याग करते हो तब आनंद लेते हो ना मंगला आरती में, यदि आप बिस्तर में हो तो मंगला आरती का आनंद नहीं आएगा। कल कोई संत बता रहा था कि रोज तो मंदिर हम आते हैं, एक दिन ना आए तो वहीं से भगवान का दर्शन कर लें। हमने कहा कि देखो भाई, भगवान तो सर्वत्र हैं, सबके हृदय में हैं, सबके घर में भी बैठे हैं। भगवान के दर्शन जो है वो दुर्लभ नहीं है, सुलभ है, कहीं भी दर्शन कर सकते हो। लेकिन मंदिर में आओगे तो भगवान का दर्शन तो होगा ही, उनके साथ साथ जो भगवान के जन हैं, जो भगवान के सेवक हैं, उनका दर्शन बड़ा मजबूती देगा आपको, बड़ा मजबूत करेगा। प्रभुपाद जी लिखते हैं अपने लेक्चर में, कहते हैं भगवान का ये शब्द है, भगवान कहते हैं कि यदि आप मेरे से प्रेम करते हो तो मेरे से ज्यादा मेरे भक्तों से प्रेम करो। यू लव मी, लव माय डिवोटी, मेरे भक्त से प्रेम करो, मैं खुश हो जाऊंगा, प्रसन्न हो जाऊंगा मैं। ब्रह्मा विष्णु शिव गुणा अवतार हैं, सत्वेशा अवतार हैं। सत्वेशा अवतार में आते हैं कुमार गण लोग, राजा पृथु तथा महामुनि वेदव्यास जी, महर्षि वेदव्यास जी, जिन्होंने सभी शास्त्रों को प्रतिपादित किया, चार वेद लिखा उन्होंने, छह शास्त्र को लिखा, 18 पुराण को लिखा, 17 पुराण को लिखा, न जाने कितने उपनिषद लिख दिया। लेकिन महर्षि वेदव्यास जी के मन में संतुष्टि नहीं थी, आनंद नहीं मिल रहा था, सुख नहीं मिल रहा था। अरे भाई इतने काम किए तो कुछ तो आनंद मिलना चाहिए था, लेकिन आनंद नहीं मिल रहा था। और तत्काल अपने गुरुदेव भगवान को याद किया, महर्षि वेदव्यास जी के पास में महात्मा नारद जी वहां पधारे और कह दिया, एक क्षण में, एक मिनट में उनके कमजोरी को पकड़ लिया और कह दिया कि भाई आपने बहुत प्रकार को लिखा, बहुत उपाय बताया, बहुत साधन बता दिया, लेकिन जो भगवान के और भगवान के भक्तों का जो प्रिय ग्रंथ है, उस ग्रंथ की आपने रचना नहीं किया। बोले कौन सा? बोले कि भागवत महापुराण की रचना नहीं किया। तो 18वें पुराण में महर्षि वेदव्यास जी ने भागवत का प्रतिपादित किया, तब जाकर उनको संतुष्टि हुई। हम लोग भी कभी कभी जीवन में अथक परिश्रम करते हैं, बहुत काम करते हैं, लेकिन कभी कभी सफलता नहीं मिलती है, मन संतुष्ट नहीं होता है, अशांति बनी रहती है जीवन में, कुछ न कुछ लगता है कि छूट गया है। हम लोगों का भी ये छूट गया है। क्या छूटा है? भगवान से संबंध जोड़ना छूट गया है। पता नहीं आज वो ब्रह्मचारी जी बैठे हैं कि नहीं, ब्रह्मचारी जी थे, पूछ रहे थे कि भगवान के शरणागति के विषय में पूछ रहे थे कि भगवान की शरणागति कैसे ली जाए, कैसे उनके समर्पण हुआ होना चाहिए। जैसे हम लोग जप भी कर लेते हैं, कीर्तन भी करते हैं, संतों का संग भी करते हैं, लेकिन पूर्णतः भगवान के शरणागति नहीं ले पाते हैं, समर्पण नहीं हो पाते हैं। अर्जुन भी जाकर के भगवान ने अंतिम अध्याय के अंतिम श्लोक में जाके भगवान ये बात कहा कि देखो हमने बहुत गीता के माध्यम से तुम्हें ज्ञान दिया, लेकिन जब तक तुम मेरे शरण में नहीं आओगे ना, गीता को समझ नहीं पाओगे। जप करने का मतलब यही है कि भगवान के शरणागति ले लिया जाए। शरणागति कैसी शरणागति? जैसे छोटा सा बालक अपने माता पिता का शरणागति ले लेता है। और कैसी शरणागति? जैसे गुरु के पाद पद्मों में शिष्य जाकर के शरणागति ले लेता है। शरणागति के बहुत सा ऐसे उदाहरण है शास्त्र में। एक कुम्हार ने मिट्टी खोदा, कुम्हार जो है उस मिट्टी को खोदा और मिट्टी खोदने के बाद में उस पर पानी डाल दिया, उस मिट्टी ने कुछ नहीं बोली। पानी डालने के बाद जब मिट्टी बिल्कुल मुलायम हो गया, फूल गया, तो उसको पैरों से बिल्कुल चहन दिया, मसल दिया, उस मिट्टी ने कुछ नहीं बोली। उसको मुलायम करके, सख्त करके, उसको चाक पर चढ़ा दिया और अनेक प्रकार के बर्तन निकाल दिया, उस मिट्टी ने कुछ नहीं बोली। उस मिट्टी की शरणागति देखिए कुम्हार के प्रति, मिट्टी कुछ नहीं बोली। जब घड़ा ढक्कन जब बन गया उसमें से न जाने कितने चीज बना दिया, उस मिट्टी को धूप में ले जाकर के रख लिया, बिल्कुल पक गया, बिल्कुल सूख गया। सूखने के बाद में थोड़े दिन में ही उस मिट्टी को आग में उतार दिया। उतने के बाद भी उस मिट्टी ने कोई शिकायत, कोई विरोध नहीं किया कि तुमने मेरे को चढ़ दिया, आग में उतार दिया, धूप में डाल दिया, बिल्कुल शरणागति लिया है कुम्हार का। वो मिट्टी कुछ नहीं बोली। जब मिट्टी वो घड़ा के रूप में पक गई तो उसको मार्केट में, बाजार में ले जाकर के बेचने के लिए तैयार हो गया, बेच दिया। किसी ने 5-10 रुपया में मिट्टी के घड़ा खरीद करके हाथ मार के अपने घर में ले गया। मिट्टी कुछ नहीं बोली। उस मिट्टी के गर्दन में रस्सी डाल करके कुएं में उतार दिया। कुएं से उतार करके मिट्टी का बर्तन, वो क्या हुआ कि पानी भर करके सबको पानी पिला दिया। मिट्टी कुछ नहीं बोली। मिट्टी कुछ दिन में घड़ा फूट गया, मिट्टी मिट्टी में मिल गई, मिट्टी कुछ नहीं बोली। ऐसी शरणागति होनी चाहिए। भगवान के प्रति यदि ऐसी शरणागति हो जाए, भक्ति विनोद जी कहते हैं, मानस देह गेह जो कुछ मोरा, अरपिला तुआ पद नंद किशोर। भक्ति विनोद जी यहाँ से नहीं बोल रहे थे, यहाँ से बोल रहे थे, अंदर से बोल रहे थे। ऐसी शरणागति होनी चाहिए। हम भगवान के सामने होते हैं, शरणागति के बात करते हैं, प्रणाम भी करते हैं, कुछ अपने स्वभाव के कारण मांगते भी हैं, लेकिन शरणागति जब तक हाथ जुड़े हैं, प्रार्थना करते हैं तभी तक है। जैसे निकल जाते हैं भगवान से, जब हम शरणागति की बात करते हैं तो भगवान हमारी ध्यान से बात सुनते हैं, ध्यान से बात सुनते हैं। इसके बाद में जब जीव वहां से निकल कर गेट पर आता है तो छूटा भटका उसका मित्र दिख गया। यहाँ भक्त ने प्रार्थना किया है, प्रभु आप ही मेरे सब कुछ हो, आप मेरे माता हो, पिता हो, भाई बंधु हो, आप सब कुछ हो मेरा। भगवान सब स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन जब जीव वहाँ से बाहर निकल करके जाता है और उसका कोई घनिष्ठ मित्र मिल जाता है, उसको गले लगा के बोलता है, अरे मित्र तुम इतने दिनों से कहाँ थे, हमारी आंखें देख देख के थक गई, आए तुम मेरे इतने अनन्य मित्र हो, लंगूठिया यार हो, ऐसा कह करके मिलने लगता है तो भगवान मंदिर में सोचते हैं कि देखो अभी इसने मेरे को बनाया था, अब जा करके वहां बना लिया। ऐसी शरणागति नहीं, शरणागति हो तो बिल्कुल पक्की शरणागति हो। अनुवाद में लिखते हैं, समय है ना भैया 5-7 मिनट। भगवान अपने आप को 2 रूपों में प्रकट करते हैं, प्रकाश तथा विलास। तात्पर्य में भगवान अपने व्यक्तिगत साकार रूपों को 2 मुख्य वर्ग में प्रकट करते हैं। प्रकाश रूप भगवान कृष्ण द्वारा अपनी लीलाओं के लिए प्रकट किए जाते हैं और इनके रूप उन्हीं के समान होते हैं। भगवान अपने लीला को संपन्न करने के लिए एक रूप प्रकट करते हैं जिसको साकार रूप कहते हैं। ऐसे भगवान निर्गुण भी हैं, निराकार भी हैं, लेकिन प्रभुपाद जी निर्गुण का मतलब ये कहते हैं कि निर्गुण का मतलब ये है कि प्रकृति का जो 3 गुण है वो भगवान पर लागू नहीं होता है, इसलिए भगवान को निर्गुण कहते हैं। निराकार इसलिए कहते हैं कि भगवान के प्रत्येक इंद्रियां प्रत्येक कार्य करती हैं। निराकार का मतलब ये नहीं हो कि भगवान के पास हाथ पैर नहीं है, नहीं, हाथ भी है, पैर भी है, जिह्वा भी है, देख भी सकता है, लेकिन बिना जिह्वा के भी खा सकता है। शास्त्र में कहते हैं, आनन रहित सकल रस भोगी बिनु वाणी वक्ता वर जोगी। भगवान बिना जिह्वा के भी खा सकता है, संसार के सारे रस को एक साथ में ले सकता है परमात्मा। ये भगवान का सगुण रूप है, बिना पैर के भी चल सकते हैं, पैर से न चल करके हाथ से भी चल सकते हैं, हाथ से कर्म न करके भगवान देख कर भी कर्म कर सकता है। ये भगवान है, भगवान की भगवता है ये। इसी बात को ठीक से समझना कि भगवान कौन है, हम कौन हैं, हमें क्या करना चाहिए, इस बात को ठीक से समझना है बढ़िया से जप के माध्यम से। अब यहाँ पर कहते हैं रूप उन्होंने समान होते हैं। जब भगवान के भगवान ने द्वारका में 16,000 रानियों से विवाह किया तो उन्होंने 16,000 प्रकाश विस्तारों द्वारा ऐसा किया। भगवान जब विलास मतलब आनंद सुख लेना, भगवान द्वारकाधीश जब बने, भगवान वृंदावन के लीला समाप्त किया, प्रभु ने 11 साल 52 दिन तक भगवान ब्रजमंडल में रहे, यहाँ पर भगवान ने अपने अवतारों के द्वारा बहुत मधुर मधुर सुंदर लीलाएं किया। यहाँ लीला समाप्त करके भगवान मथुरा गए, मथुरा में भगवान 14 वर्ष रहे और वहाँ भी सुधर्मा सभा में राजनीति के भगवान बात करते थे। जब भगवान मथुरा से द्वारका गए तो भगवान 100 वर्ष वहाँ रहे और भगवान 100 वर्ष रह करके भगवान ने अपने ऐश्वर्य को प्रकट किया और ऐश्वर्य को प्रकट करके भगवान 16,108 रानियों से विवाह किया। आजकल लोग कहते हैं, जो लोग विषयी हैं वो कहते हैं, अरे भगवान ने इतना शादी किया, हम दो चार करेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। हमने कहा एक ही संभाल लो, दो चार की बात छोड़ दो, एक संभल जाए वही बहुत है, दो चार तो बहुत ज्यादा है। भगवान ने 16,108 रानियों से विवाह किया तो 16,108 महल भी बनाए, और ये महल नहीं कांच कपड़े वाले, टूटने फूटने वाले, आज एक साल में बनता है तो दूसरे साल उसकी चमक चली जाती है। भगवान ऐसे महल बनाए, ऐसे महल बनाए भगवान कि जिसमें कोई भौतिक चीज नहीं लगा, कंप्लीट गोल्ड सोने का था वो। हम लोग तो एक सोना लगा ले ना कान में, मताएं लगा ले तो बाल ढकना भूल जाती हैं, ये कान का सोना ढक जाएगा। भाई लोग यहाँ क्या पहनते हैं, चैन, यहाँ मोटा सा चैन पहन ले भाई लोग तो बटन नहीं लगाते, फिर वहां तो कंप्लीट सोने का था, तो सोने का था पूरा। 16,108 महल में एक ही साथ भगवान प्रवेश करते थे, एक एक रानियों से 10-10 पुत्र, एक एक पुत्रियां भी थी, लेकिन भगवान उसके बाद भी परम ब्रह्मचारी है, परम ब्रह्मचारी है। आप प्रमाण से देखिए, राष्ट्रीय यज्ञ में देश के बड़े बड़े राजा, संत, महात्मा, वैष्णव सब एकत्र थे। पूछा गया कि भाई यहाँ पर अग्र पूजा किसकी की जाए, पहली पूजा किसका होना चाहिए, कोई नहीं बोला। बहुत देर तक शांत रहे, सोचते रहे। दादा भीष्म पितामह खड़े होकर के बोले कि मैं खड़ा हुआ हूँ, मैं आजीवन ब्रह्मचारी हूँ, मैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी हूँ, भूल कर भी संसार में मेरा मन नहीं गया है, मैं ब्रह्मचारी स्त्रियों से दूर रहकर भी ब्रह्मचारी रहा हूँ, लेकिन मैं कृष्ण के विषय में कहता हूँ कि मैं स्त्रियों से दूर रह करके ब्रह्मचारी नहीं हूँ, लेकिन भगवान तो 16,108 महलों में प्रवेश करने के बाद, हजारों गोपियों के साथ नृत्य करने के बाद भी और गोपियों के साथ रहने के बाद भी परम ब्रह्मचारी हैं प्रभु। इसलिए अग्र पूजा कृष्ण की होनी चाहिए, भगवान को वहां पूजा किया गया, और एक दो लोगों के द्वारा नहीं, बड़े बड़े ऋषि महर्षि देवता सभी उपस्थित थे वहां और भगवान ने पूजा स्वीकार किया। आप ब्रह्मा जी से पूछिए, ब्रह्मा जी आप भगवान हैं? ब्रह्मा जी कहेंगे नहीं मैं भगवान नहीं हूं। आप हमसे किसी से पूछ दें तुम भगवान हो, बोले नहीं क्या कह रहे हो, कान बंद कर लेते हैं, अरे भैया नहीं हम भगवान नहीं। ब्रह्मा जी से पूछिए तुम भगवान हो, नहीं मैं भगवान नहीं हूं। इंद्र से पूछिए आप भगवान हो, बोले नहीं मैं भगवान नहीं हूं। शंकर जी से पूछिए आप भगवान हो, बोले नहीं मैं भगवान नहीं हूं। किसी ने पूछा भगवान से आप भगवान हो, भगवान ने कहा कि मैं भगवान हूं। भगवान ही कह सकता है केवल ये बात, और कोई नहीं कह सकता। तो ये भगवान का रूप है, भगवान अपने ऐश्वर्य शक्ति को प्रकट करके भगवान ने ब्रजमंडल में लीलाएं किया, द्वारकाधीश बने भगवान। यहाँ ब्रजमंडल में भी जब महाराज जब हो रहा था यहाँ पर निधिवन में, हजारों लाखों गोपियाँ वहाँ एकत्र हो गई, वो तो सभी भगवान के संगी हैं, सभी सिद्ध भक्त हैं, वो तो भगवान के साथ रहने वाले हैं, संगी गण हैं, सभी एकत्र वहाँ हो गए। भोले बाबा भी, उनको पता चला कि भाई ब्रजमंडल में श्याम सुंदर जी ने मुरली बजाई, बड़ा सुंदर भगवान ने बांसुरी बजाई, वेणु गीत के रूप, जब कथा कभी सुने आप, भगवान ने मुरली बजाई, सभी देवताओं लोग एकत्र हो गए, गोपियाँ एकत्र हो गई, देवता लोग आकाश में भगवान की प्रतीक्षा करने लगे कि भाई अब इस ब्रजमंडल में श्याम सुंदर जी क्या करने वाले हैं। सभी प्रतीक्षा करने लगे, भगवान शिव भी कैलाश पर बैठे थे, ध्यान टूट गया मुरली की आवाज सुन करके। ब्रह्मा जी किसी के भाग्य लिख रहे थे, कलम लिखनी रुक गई वहीं पर। नारद जी का मुख ब्रजमंडल के तरफ हो गया, सभी लोग, भगवान शिव ने देवी पार्वती जी से कहा कि क्या हो रहा है, बोले कि आपके आराध्य देव अब कुछ रास करने जा रहे हैं, बोले कि चलो हम भी चलते हैं। पार्वती जी ने कहा कि नहीं नहीं आज आप मार खा गए, आप नहीं जा सकते हो, आप पुरुष का प्रवेश निषेध है, वहाँ नहीं जा सकते। तो भगवान शिव ने कहा कि यदि ये पुरुष शरीर बाधित है भक्ति करने में प्रभु के दर्शन में, तो हे पार्वती जी इस शरीर को स्त्री बना दो। भगवान शिव को स्त्री बनाया गया और स्त्री बन करके गोपेश्वर महादेव के रूप में रास मंडल में प्रवेश किए। तो भगवान ने देखा कि हजारों गोपियां हमारे साथ गलबाही दे के नृत्य करना चाहती हैं, तो भगवान ने वही अपने ऐश्वर्य शक्ति को एक रूप से अनंत रूप कर दिया और सभी गोपियां सोचती थी कि मेरे साथ ही नृत्य कर रहे हैं प्रभु। ये भगवान की ऐश्वर्य शक्ति है। तो भगवान की किसी भी लीला पर हमें संदेह नहीं करना चाहिए। भगवान नियंता है, परम परमात्मा है, भगवान भोगता है, हम सब भोग हैं, अपने को भोग के रूप में भगवान को अर्पित करना चाहिए। भगवान भोगता है। हरे कृष्णा देखो वही बात ना आवाज कम आ रही है, प्रसाद है इधर, प्रसाद है। हरे कृष्णा पीछे से कम आई है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण राम की। आप सबकी धन्यवाद, आप सबका।